लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र बच्चों और विशेष रूप से पीड़ित बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता देने हेतु आवश्यक उपाय करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार आम दर्शन समारोह के अवसर पर वैटिकन के पॉल सिस्टम सभागार में एकत्रित हजारों विश्वासों एवं तीर्थयात्रियों को संबोधित कर प्रेरित चरित पर अपनी धर्म शिक्षा माला को आगे बढ़ाते हुए कहा।
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nella lettura del libro degli Atti degli Apostoli continua il viaggio del Vangelo nel mondo. E la testimonianza di San Paolo è sempre più segnata dal sigillo della sofferenza.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। सुसमाचार की यात्रा प्रेरित चरित्र की किताब तथा संत पौलुस के साक्ष्य जो पीड़ा की मुहर से चिन्हित है दुनिया में आगे बढ़ती है। पौलुस न केवल उत्साहपूर्ण गैर यहूदियों के बीच एक साहसी सुसमाचार प्रचारक हैं, जो नए ख्रिस्त समुदाय में जान डालते, बल्कि वे पुनर्जीवित ख्रिस्त के पीड़ित साक्षी भी हैं। यरूशलेम में प्रेरित का आगमन प्रेरित चरित के 21वें अध्याय में वर्णित है, जो उसके प्रति एक क्रूर घृणा को पैदा करता है, जैसा कि यीशु के लिए भी यरूशलेम एक शत्रुतापूर्ण शहर था। वे मंदिर गए जहाँ उन्हें पहचाना गया, भीड़ के हवाले किए गए और आखिर में रोमन सैनिकों द्वारा बचा लिए गए। उन पर संहिता और मंदिर के विरुद्ध शिक्षा देने का आरोप लगाया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया और इस तरह कैदखाने की उनकी यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले उन्हें शतपति के सामने लाया गया, उसके बाद कैसरिया में रोमन प्रतिनिधि के पास और अंत में महाराजा अग्रिप्पा के सामने पेश किया गया। सुसमाचार लेखक लुकस यीशु और पौलुस के बीच समानता पर प्रकाश डालते हैं। दोनों ही शत्रुओं द्वारा घृणा किए गए, सार्वजनिक रूप से अभियोग लगाए गए और शाही अधिकारियों द्वारा निर्दोष साबित किए गए। अतः पौलुस अपने प्रभु के दुख भोग में शामिल हुए और उनका दुख भोग एक जीवित सुसमाचार बन गया। संत पापा ने कहा, मैं अभी संत पेट्रस महागिरजाघर से आ रहा हूं और जहां मेरी मुलाकात यूक्रेनी धर्म प्रांत के यूक्रेनी तीर्थयात्रियों से हुई। इन्हें कितना अधिक अत्याचार सहना पड़ा है, इन्होंने सुसमाचार के लिए पीड़ा सहा है किंतु विश्वास के लिए कभी समझौता नहीं किया। वे उदाहरण हैं। आज विश्व में, यूरोप में अनेक ख्रिस्त सताए जा रहे हैं और विश्वास के लिए अपना जीवन निछावर कर रहे हैं। वे श्वेत हाथों से अत्याचार सह रहे हैं, अर्थात उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है, उन्हें हाशिए पर जीवन यापन करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि शहादत एक ख्रिस्त समुदाय के लिए प्राण वायु है। हमारे बीच हमेशा शहादत होता रहेगा, यही चिन्ह है कि हम ख्रिस्त के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। शहादत उन लोगों के साक्ष्य के लिए प्रभु का आशीर्वाद है, चाहे वे ख्रिस्ते हों अथवा कोई अन्य। तब पौलुस को अपने पर लगे आरोप पर सफाई देने की अनुमति मिलती है और अंत में राजा अग्रिप्पा द्वितीय की उपस्थिति में उनकी सफाई एक प्रभावशाली साक्ष्य बन जाती है। पौलुस जब उनसे बातें करते हैं तब भी वे अपने प्रभु की गवाही देते हैं। संत पापा ने कहा कि एक सच्चा मिशनरी वास्तव में अपने आप पर केंद्रित नहीं होता, बल्कि सब कुछ का श्रेय प्रभु को देता है, जो सब कुछ के केंद्र हैं, विशेषकर उनके हृदय के। महाराज के साथ बातचीत में पौलुस इसराइलियों के साथ गहरे संबंध को भी रेखांकित करता है, फरीसियों के साथ पुनरुत्थान की आशा को साझा करता और एक ख्रिस्त के रूप में घोषित करता है कि यह सब कुछ ख्रिस्त में पूरा हो चुका है। तब पौलुस अपने मन परिवर्तन की घटना का वर्णन करता और बतलाता है कि ख्रिस्त ने उन्हें ख्रिस्त बनाया और राष्ट्रों के बीच अपना मिशन सौंपा है, ताकि उन्हें अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान की अधीनता से ईश्वर की ओर अभिमुख करने के लिए उनके पास भेजे, जिससे कि उनमें विश्वास करने के कारण अपने पापों की क्षमा और संतों के बीच स्थान पा सकें। पौलुस ने इस आदेश का पालन किया और अपनी ओर से कुछ नहीं किया, बल्कि नबियों एवं मूसा की संहिता में जिन बातों के विषय में कहा गया है उनकी घोषणा की, अर्थात यह कि मसीह दुख भोगेंगे और मृतकों में सबसे पहले पुनर्जीवित होकर हमारी जनता को तथा गैर यहूदियों को ज्योति का संदेश देंगे। पौलुस का उत्साही साक्ष्य महाराज अग्रिप्पा के हृदय को छू लिया, जिसके लिए अब केवल निर्णायक कदम लेना बाकी रह गया था। उसने कहा, तुम तो अपने तर्कों द्वारा मुझे सरलता से मसीही बनाना चाहते हो। इस तरह पौलुस निर्दोष घोषित किया जाता है, किंतु उसे रिहा नहीं किया जा सकता क्योंकि कैसर से अपील की गई थी। इस प्रकार रोम की ओर ईश्वचन की यात्रा बिना रुक के आगे बढ़ती है। पौलुस रोम तक बेड़ियों में रहते हैं। तब से पौलुस को एक कैदी के रूप में देखा जाता है, जहां बेड़ियां सुसमाचार के प्रति उनकी निष्ठा एवं पुनर्जीवित ख्रिस्त के साक्ष्य के चिन्ह बन जाते हैं। संत पापा ने कहा,
Le catene sono certo una prova umiliante per l'apostolo che appare agli occhi del mondo come un malfattore.
बेड़िया निश्चय ही प्रेरित पौलुस के लिए दीनता की परख थी, जो दुनिया की नजरों में एक बुरा व्यक्ति था, किंतु ख्रिस्त के प्रति उनका प्रेम आगाध था कि बेड़ियों को भी वे विश्वास की नजर से देखते हैं। पौलुस के लिए विश्वास ईश्वर या दुनिया पर कोई सिद्धांत या विचार नहीं था, किंतु अपने हृदय में ईश्वर के साथ प्रेम का अनुभव था। यह यीशु ख्रिस्त के लिए उनका प्रेम था। संत पापा ने तीर्थयात्रियों को संबोधित कर कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, पौलुस हमें कठिनाइयों में धैर्यशील बनना और सब कुछ को विश्वास की नजरों से देखना सिखलाते हैं। आज हम प्रेरित की मध्यस्थता द्वारा प्रभु से निवेदन करें कि वे हमारे विश्वास को नवीकृत करें एवं मिशनरी शिष्यों तथा ख्रिस्त के रूप में अंत तक अपनी बुलाहट में विश्वस्त बने रहने में मदद दें। इतना कहने के बाद संत पापा ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और विश्व के विभिन्न देशों से आए सभी तीर्थयात्रियों एवं विश्वासियों का अभिवादन किया। खासकर उन्होंने अमेरिका के तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। तत्पश्चात उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार के लिए प्रार्थना की कि हम ख्रिस्त जयंती पर नवजात उद्धारकर्ता के आने की तैयारी में एक पौत्र आगमन का अनुभव कर सकें। तब अंत में उन्होंने अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Benedicat vos omnipotens Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
तुम में ही भरोसा, तुम बिन सदा निराशा, दे दे मुझे हमेशा तेरे प्यार का दिलासा। प्रभु तुम में ही भरोसा, तुम बिन सदा निराशा, दे दे मुझे हमेशा तेरे प्यार का दिलासा। टूट गए हैं सपने, कभी बनते ना वे अपने, जीवन में है अंधेरा, आता नहीं सवेरा, केवल तुम्ही में पाता रहूं, प्रभु एक नया बसेरा, केवल तुम्ही मैं पाता रहूं प्रभु एक नया बसेरा, प्रभु तुम में ही भरोसा, तुम बिन सदा निराशा, दे दे मुझे हमेशा तेरे प्यार का दिलासा। बताए मंजिल को कैसे पाए, झूठों की संगति में मिलती कभी न राहे, तेरी राह में मैं बढ़ता चलूं प्रभु तुम ही हो सहारा, तेरी राह में मैं बढ़ता चलूं प्रभु तुम ही हो सहारा, प्रभु तुम में ही भरोसा, तुम बिन सदा निराशा, दे दे मुझे हमेशा तेरे प्यार का दिलासा, प्रभु तुम में ही भरोसा, तुम बिन सदा निराशा, मुझे हमेशा तेरे प्यार का दिलासा।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार आम दर्शन समारोह के पहले उक्रेन में भूमिगत बैजेंटीन रीति के मुकायेव धर्म प्रांत के बाहर प्रकट होने की 30वीं वर्षगांठ पर रोम आए धर्माध्यक्ष पुरोहितों, धर्म बहनों और लोक धर्मी तीर्थ यात्रियों से मुलाकात की। संत पापा ने कहा, मुझे संत पेत्रुस के मकबरे में आपका स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है और मैं आपके साथ साथ शाश्वत पिता ईश्वर की शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने शक्तिशाली हाथ से आपकी कलीसिया को सोवियत शासन के लंबे जुल्म से मुक्त किया। मुकायेवो की कलीसिया कई शहीदों की मां है जिन्होंने अपने रक्त से मसीह, कैथोलिक कलीसिया और रोम के धर्माध्यक्ष के प्रति अपनी निष्ठा की पुष्टि की। संत पापा ने विशेष रूप से धन्य शहीद धर्माध्यक्ष थियोडोर रोमाना का स्मरण किया जिन्होंने इतिहास के लंबे अंधेरे क्षणों में कलीसिया का साहस के साथ मार्गदर्शन किया। उन्होंने भले चरवाहे मसीह का अनुसरण करते हुए अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और शहीद हो गए। संत पापा ने उनके पूर्वजों, दादा दादी, माता पिता को भी याद किया जिन्होंने अपने घरों की अंतरंगता में अक्सर शत्रुतापूर्ण शासन की निगरानी में अपनी स्वतंत्रता और जीवन को खतरे में डालकर मसीह में अटल विश्वास को जिया और मसीह की शिक्षा अपने बच्चों को दी। संत पापा ने उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी अपने पूर्वजों के जीवित विश्वास और कैथोलिक कलीसिया के विश्वास के शानदार गवाह हैं। संत पापा ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से मसीह के साथ मुलाकात को नवीनीकृत करने हेतु आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, ऐसा कोई कारण नहीं कि कोई भी यह सोच सकता है कि यह निमंत्रण उनके लिए नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रभु द्वारा लाए गए आनंद से बाहर नहीं है। अंत में संत पापा ने मुकायेवो धर्म प्रांत के सभी लोगों को हर प्रकार की कठिनाइयों और खतरों से दूर रहने हेतु माता मरियम के चरणों में सुपुर्द किया और आने वाले क्रिस्ट जयंती की शुभकामनाएं दी। संत पापा ने विशेष रूप से बच्चों, बीमारों और पीड़ित लोगों को सौहार्दपूर्ण शुभकामनाएं दी। उधर वाटिकन में मंगलवार को अंतरधार्मिक वार्ता के लिए बनी परम धर्मपीठीय सम्मेलन द्वारा जख्मी मानवता की सेवा, अंतरजातीय एकजुटता की ओर विषय पर एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक अंतरधार्मिक वार्ता के लिए बनी परम धर्मपीठीय सम्मेलन और कलीसियाओं के विश्व सम्मेलन के बीच दीर्घकालिक मित्रता और सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई। बैठक में धर्म शास्त्रियों, राजनयिकों और ख्रिस्तीय उदार संगठनों के सदस्यों द्वारा गरीबों, जरूरतमंदों और पीड़ितों के साथ रहने एवं काम करने के अपने अनुभव के आधार पर कई मुद्दों पर चर्चा की गई। अपने शुरुआती संबोधन में अंतरधार्मिक वार्ता के लिए बनी परम धर्मपीठीय सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल मिगुएल आयुसु ने उपस्थित प्रतिनिधियों को बताया कि इस सत्र ने विभिन्न कलीसियाओं के विशेषज्ञों को अंतरधार्मिक संवाद के दायरे में हमारी आम सेवा की विशिष्ट आयाम को बढ़ाने का अवसर दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह बैठक इस संयुक्त परियोजना पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और समृद्ध करेगी। वाटिकन न्यूज से बात करते हुए कार्डिनल ने कहा, संवाद की मांग है कि सबसे पहले अपनी पहचान के साथ पूरी तरह से पहचाना जाना और फिर सुनने के माध्यम से खुद को दूसरे के सामने खोलना और इस तरह से अपने आप को फिर से देखने की संभावना रहती है। आपके लिए एक सामान्य मंच मिलता है जो कि समानताओं और असमानताओं से बना है। इन समानताओं के माध्यम से हम आम कार्यों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। हम इसे संवाद कह सकते हैं। बैठक के विषय एक घायल मानवता की सेवा के बारे में बातें करते हुए कार्डिनल ने कहा कि संत पापा फ्रांसिस ने अपने कार्यकाल के शुरू में ही स्पष्ट रूप से कहा कि कलीसिया को आज जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह है घावों को भरने और विश्वासियों के दिलों को गर्म करने की क्षमता। कार्डिनल ने कहा कि कलीसिया को लोगों के पास होने की जरूरत है। कलीसिया को अपने आप से बाहर देखने और निकलने की जरूरत है। कार्डिनल आयुसु ने कहा कि अंतरधार्मिक संवाद के माध्यम से हम अपनी मानवता के घावों को ठीक करने के लिए और चंगा करने के लिए बुलाए गए हैं। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस पर जीवन में मानवाधिकार सुनिश्चित करने में युवाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया। मंगलवार 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने कहा कि दुनिया भर में युवा लोग आगे बढ़ रहे हैं, संगठित हो रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के लिए, महिलाओं और लड़कियों के समान अधिकारों के खातिर, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी के लिए और अपनी राय बिना किसी भय के व्यक्त करने के लिए युवा लोग शांतिपूर्ण भविष्य, न्याय और समान के अवसरों के अधिकार के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, सभी कोई इन अधिकारों के हकदार हैं। सिविल, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, चाहे वे कहीं भी रहते हों, उनकी नस्ल, जातीय मूल, लिंग, धर्म, राजनैतिक और अन्य विचार जो कुछ भी हो, विकलांग या अन्य स्थिति में हो, अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सभी से मैं युवाओं को समर्थन देने और उनकी हिफाजत करने का आह्वान करता हूं, जो मानव अधिकारों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक अलग संदेश में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैसलेट ने कहा कि इस वर्ष के मानवाधिकार दिवस को जबरदस्त सक्रियता के युग से चिन्हित किया जा रहा है, विशेष रूप से युवा लोगों द्वारा। बैसलेट ने उन लाखों बच्चों, किशोरों, युवाओं और वयस्कों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया जो हमारे ग्रह में आने वाले संकट के बारे में जोर शोर से बोल रहे हैं। उनका और भावी पीढ़ी का भविष्य दांव पर है। उधर चेक गणराज्य की सरकार ने पुष्टि की है कि ओशरावा शहर के एक अस्पताल के प्रतीक्षालय में अवैध हथियार से लैस एक बंदूकधारी ने 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और 3 को घायल कर दिया। हमले के बाद बंदूकधारी ने अपनी जान ले ली। गोली मारने का मकसद स्पष्ट नहीं है, पुलिस उसकी जाँच कर रही है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।